તારીખ 8/5/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 29.
કોઈ પણ કિંમતે કલ્યાણ કરવું છે તેવી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના ન હોય, પરંતુ કલ્યાણ કરવું છે તેવી ભાવના હોય તો કલ્યાણ થાય કે નહીં. હિન્દીમાં કોઈ ભી કિંમત સે કલ્યાણ કરના હી હૈ એસી ઉત્કૃષ્ટ ભાવના ન હો, પરંતુ કલ્યાણ કરના હૈ એસી ભાવના હો તો કલ્યાણ હોવે કે નહીં હો, નહીં હો. ऐसी सामान्य इच्छा या भावना सामान्य तो अनंत बार हुई है, अनंत बार किया है, जी. संसार में जीव को दर्शन हो वो बहुत है. क्या है? जीव को बहुत मोह है. तो सामान्य भाव से, सामान्य भावना से, सामान्य इच्छा से टूटता नहीं है, मिटता नहीं है, इसलिए कल्याण नहीं होता है. आत्मकल्याण करने में सामान्य भाव से, सामान्य भावना से चले के नहीं चले, ऐसा हमको विकल्प आता है. संसार में सामान्य मोह नहीं करके अत्यंत मोह क्यों करते हैं? वहां वो विकल्प क्यों नहीं आता है कि हमको ज्यादा मोह नहीं करना, थोड़ा करना, ऐसा विकल्प वहां क्यों नहीं आता है? वहां तो पूरे पूरे डूब जाते हैं. हमको ये ख्याल नहीं है कि हमारा मोह कितना बलवान है और उसको टूटने के लिए कितनी बलवान भावना चाहिए और कितना प्रबल पुरुषार्थ चाहिए. जितना कारण दें उतना कार्य हो, तो यह नियम ऊपर की बात में लागू पड़े कि नहीं पड़े? लागू पड़ता है. भावना रूपी कारण, पुरुषार्थ रूपी कारण जितना देने में आएगा उतना कार्य होगा, वो बात लागू पड़ती है बराबर. ज्यादा भावना होगी तो कारण, वो कारण है और आत्म कल्याण का.
तो जितना यानी कम भावना अगर हो तो उतना कार्य होता है प्रश्न. तो जितना कारण देंगे उतना कार्य होगा, तो कम भावना अगर हो तो उतना कार्य तो होता है कि नहीं?
इसमें ऐसा है कि उसका विरुद्ध कार्य भी हमारा चालू है, इसलिए नहीं होता है. क्या है? आप हमको 5 रुपया देते हैं और हम आपसे 10 रुपया ले लेते हैं, तो कारण कार्य तो ऐसा बनता है, आप कहते हैं मैंने तो पांच लिया लेकिन पांच के बदले दस, वो तो पांच का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो कारण कार्य का नियम तो बराबर लागू पड़ता है, हम एक साइड को गिनते हैं दूसरी साइड को क्यों नहीं गिनते? हम भावना करते हैं वो गिन लेते हैं और भावना विरुद्ध परिणमन करते वो नहीं गिनते हैं। ये तो सामान्य हिसाब किताब की बात है, और आप तो इंजीनियर हो, उसमें उतना गिनती का हिसाब नहीं आवे क्या? हाँ, ये तो 5-25 का हिसाब तो 15 साल का बच्चा भी कर सकता है। हाँ, नहीं करता, 10 साल का बच्चा भी करेगा, गणित तो सीखा है। एक 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 बाजू क्यों गिनना, दूसरी बाजू क्यों नहीं गिनना? हम मंदिर जाए गिन ले, हम थोड़ी भावना करे गिन ले, और अधिक मोह करे वो गिने नहीं, वो कहाँ की गिनती है, कैसी गिनती है?
वो हमारी भावना उठा जाता
है। ये ऐसा ही हुआ है अभी तक, हमने इतना उपवास किया, आप लोगों में तो क्या इतना आयंबल किया, आयंबिल किया, इतनी ओली किया, इतने साल तक वो किया, इतने साल तक वो किया, लेकिन मोह इससे ज्यादा किया वो नहीं गिनेंगे, वो नहीं गिनाएंगे, वो किया वो किया वो किया वो गिनाएंगे। इतना दान दिया, हाँ, इतने साल पूजा किया, इतने साल शास्त्र पढ़े, और मोह कितना किया, वो सब तुम्हारा खा गया, जितना किया वो सब खा गया। दूसरा प्रश्न, माता पिता प्रति, पत्नी के प्रति, संतानों के प्रति मुमुक्षुए कितनी जवाब जिम्मेवारी निभानी, निभा करके कितनी जिम्मेदारी निभा करके धर्म आराधना करनी चाहिए? पहले तो हम हमारे परिवार के कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इनकी मान्यता को स्पष्ट करो। कर सकते हैं क्या? तो कर नहीं सकते हैं, जो हम कर नहीं सकते हैं उसको जिम्मेवारी गिन करके इसका कर्तापना जो अनादि से अज्ञान से चला आया है उसको हमें दृढ़ करना है, या हमें उस अज्ञान को छोड़ना है, वो कर्तापने का अज्ञान को छोड़ना है या उसको दृढ़ करना है, बताइए क्या करना है? हाँ, वो तो नितांत अज्ञान है और कुछ नहीं है, और दर्शन मोह तो परिवार के प्रति अपनत्व मिटाने से मिटता है। तो ये मेरे माँ बाप है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे संतान है, उसमें अपनत्व दृढ़ करना है क्या? ये तो दर्शन मोह बढ़ाने की बात है, इसको तो तोड़ना है। आप अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह हो, लिखा है कृपालु देव ने सुभाग भाई के प्रति लिखा है कि आप अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह हो। स्नेह को छोड़ो, ममता को छोड़ो, ऐसी पागलपन की शिक्षा तुमको हम लिख रहे हैं। क्या शिक्षा? गांधी शिक्षा। क्योंकि लोग में तो कहेंगे अरे परिवार के प्रति ये प्रकार का स्नेह छोड़ देना वो कोई अच्छी बात है क्या? अच्छी नहीं दिखेगी, लौकिक रूप से अच्छी नहीं दिखेगी, लेकिन ये तो लोकोत्तर मार्ग है, ये लौकिक मार्ग नहीं है, ये तो लोकोत्तर मार्ग है। हमको हमारे आत्मकल्याण की जिम्मेवारी है कि नहीं है? धर्म आराधना करना मैंने आत्मा का कल्याण करना, उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है? वो बात पहली, या कुटुंब के कार्य की जिम्मेवारी की बात पहली, कौन सी बात मुख्य है? पहले मैंने मुख्य कौन कौन सा है? अपना आत्मकल्याण करना वो मुख्य बात होनी चाहिए, सबसे पहले वो बात प्रायोरिटी में आनी चाहिए। ये तो पशु भी करता है, एक कूड़ा में रहने वाले घुंड भी ऐसा ही करता है। हमारी बुद्धि और इसकी बुद्धि में क्या अंतर हुआ? उतना तो वो भी करता है। परिवार के सभ्यों के परिणाम बिगड़ जाते हो तो धर्म प्रवृत्ति में काप मुक देना योग्य है या नहीं? क्या करें, हम धर्म करने को जाते हैं तो हमारे परिवार के सभ्यों के परिणाम बिगड़ जाते हैं, इसलिए वो राजी रहे ऐसा करना है क्या? हाँ, वो राजी नहीं रहे तो धर्म को छोड़ देना है। वो लोग कहे कि तुम धर्म को छोड़ दो वरना हम राजी नहीं रहेंगे, तुम धर्म करते हो हमको पसंद नहीं है, और फिर भी करोगे तो हमको तो दुखलेश हो जाएगा, तो छोड़ देना क्या? इसको तो कुटुंब प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो कुटुंब प्रतिबंध कहते हैं। दृष्टांत पूर्वक सत्संग में हमेशा एक दो घंटे से ज्यादा समय निकालते हैं, जाता है तो परिवार के सभ्यों के परिणाम बिगड़ जाते हैं, तो सत्संग इससे ज्यादा समय नहीं करना चाहिए। संतानों में संस्कार का सिंचन करना, उसको घर में पढ़ाई वगैरह कराना में भी समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सत्संग जितना हो सके उतना ज्यादा करना चाहिए, और उसमें हमारे परिवार के सभ्यों के परिणाम बिगड़ते हैं तो उनको समझाना चाहिए कि आप लोगों को इसमें क्या आपत्ति है, आप पैसा कमाने के लिए कितने घंटे जाते हैं? 8 घंटा जाते हैं ना, और आत्मकल्याण के लिए 2 घंटा, और परिवार के लिए 8 घंटा तो निकालते हैं, फिर कितनी मजदूरी करनी है? परिवार के लिए 8 घंटा और आत्मा के लिए 2 घंटा, मैंने 1/4 फिर भी वो भी पसंद नहीं है, तो फिर क्या करने का है? पढ़ाने के लिए तो स्कूल भेजते हैं बच्चों को, ट्यूशन रख सकते हैं, अपना कीमती समय क्यों बिगाड़ना? अपना समय क्यों बिगाड़ना है इसके पीछे? ऐसे तो बहुत से काम हैं एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिले, उतने काम है संसार में तो। लेकिन अपना आत्म कल्याण के लिए जैसे कैसे भी समय निकाल लेना चाहिए। परिवार के कार्य करते करते दुर्गति में चले जाएंगे तो परिवार वाले दुर्गति से छुड़ाने के लिए आएंगे क्या?
नहीं आएंगे।
आत्मा की लगने कहीं कुछ लगी है ऐसा लगता है, परंतु प्रथम विचार ये नहीं आता है कि सत्पुरुष को खोजें, तो हमको ऐसा क्यों बनता है? तो ये यथार्थ लगनी नहीं लगी है, ऊपर ऊपर की लगी है, यथार्थ नहीं लगी है। क्योंकि सुबह दृष्टांत दिया था कि जो भैंसा को चराता है अनपढ़ है, गंवार है, लोग उसको समझते हैं कि ज़्यादा बुद्धि नहीं है, फिर भी उसको दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। और हमको बुद्धिमान समझते हैं, फिर भी हमारे भवरोग के लिए हमको डॉक्टर पास जाने के लिए हमको क्यों सूझ नहीं आती है कि हमारी उतनी बुद्धि भी नहीं है, जितनी भरवाड़ की बुद्धि होती है उतनी भी हमारी नहीं है। इसका मतलब वो हो गया। पहले भव भ्रमण का भय उत्पन्न हो या पहले सत्पुरुष के चरण में जाना? पहले भव भ्रमण का भय उत्पन्न नहीं होगा तो सत्पुरुष के चरण में क्यों जाना? भव भ्रमण का भय नहीं होगा तो फिर जाने का मकसद क्या है, कौन सा हेतु है? पहले भव भ्रमण का भय होना चाहिए तो ये विचार आएगा कि पहले आत्म तत्व नव तत्व का ज्ञान करना, ठीक है प्रश्न तो कि पहले कुछ नहीं करना, पहले आत्म तत्व का ज्ञान होगा भी नहीं और नव तत्व का ज्ञान होगा भी नहीं। हाँ पढ़ाई हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, लेकिन ज्ञान होगा नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होने का भी जो पद्धति होती है तो पद्धति से ज्ञान होगा। पहले पात्रता योग्यता को प्राप्त करनी या पहले सत्पुरुष को खोजना? सत्पुरुष को खोजने का परिणाम भी पात्र जीव को आता है और सत्पुरुष के संग में भी पात्रता विशेष हो इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर पात्रता नहीं होगी तो सत्पुरुष का संग भी सफल नहीं होगा, सत्संग निष्फल हो जाएगा। जो सहजात्म स्वरूप परम गुरु, यह पद में सत्पुरुष श्री गुरु की महिमा और अपने त्रिकाली स्वभाव ध्येय की महिमा है या क्या, इसका मर्म बताइए। सहजात्म स्वरूप परम गुरु ये अपने आत्मस्वरूप के विषय में लिखा गया है। सहजात्म हमारा स्वरूप है और यही परम गुरु है। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, परम गुरु हमारा आत्मा ही है और वो सहजात्म स्वरूप है, ऐसा इसका सीधा अर्थ निकलता है। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु, तो सर्वज्ञ देव भी परम गुरु है क्योंकि इसके उत्कृष्ट परम मैंने उत्कृष्ट, तो उसमें लिखने वाले ने वो सर्वज्ञ देव शब्द नहीं लिखा है। हाँ हाँ, तो गुरुदेव ने जो पूरा वाक्य दिया है उसमें सर्वज्ञ देव के लिए दिखाया है, तो वो परम गुरु मैंने उत्कृष्ट गुरु है। और उनकी दशा कैसी है कि सहजात्म स्वरूप जैसा आत्मा है वैसे ही सर्वज्ञ देव की दशा हो गई है। जैसा सहजात्म स्वरूप है वैसा ही सर्वज्ञ देव है। सहजात्म स्वरूप और सर्वज्ञ देव में कोई अंतर नहीं है और वही परम गुरु उत्कृष्ट गुरु है। वो सर्वज्ञ देव के लिए बात है। हमारा आत्मा सर्वज्ञ देव कहाँ हुआ है? सर्वज्ञ स्वरूप है, सहजात्म स्वरूप वो सर्वज्ञ स्वरूप है, लेकिन परम गुरु सर्वज्ञ देव को बोलने में आता है। तो वहाँ जो सर्वज्ञ देव लिया है वहाँ परम गुरु सर्वज्ञ परमात्मा को लक्ष्य में लेकर के लिया है, उसका स्मरण किया है। मोह या सुख बुद्धि एक ही है। हाँ, मोह कहो या पर में सुख बुद्धि कहो, दोनों एक बात है। क्रम के बारे में विस्तृत वर्णन करें जिससे क्रम भंग न हो। क्रम के बारे में स्वाध्याय में तो चलता है, फिर भी ऐसा है कि किसी भी मुमुक्षु को यथार्थ क्रम से प्रवेश होता है तो सबसे पहले उनको परिभ्रमण की चिंता आती है, बहुत होती है, जिसको जूर्णा बोलते हैं इतनी होती है। तो उनको यथार्थ रूप से उदासीनता या वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब उदासीनता और वैराग्य होता है तो अपने उदय भावों में जो रस था वो रस निरस हो जाता है। इतनी स्थिति आती है तो फिर वो जीव अपना पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य या ध्येय बांधने को समर्थ होता है। ये इसका तीसरे स्टेज का परिणाम है। फिर से पहले स्टेज में भवभ्रमण की चिंतना होती है और चिंतना पूर्वक दूसरा स्टेज निरसता का, उदासीनता का, वैराग्य का होता है। दो यथार्थ होता है तो फिर पूर्णता का लक्ष्य होने की भूमिका तीसरी आती है। जब पूर्णता का लक्ष्य होता है तो शीघ्रातिशीघ्र हमारी पूर्ण दशा हो, निष्कलंक दशा हो, शुद्ध दशा हो, ऐसा जो फोर्स आता है, इसका संवेग आता है। आजकल हम तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं लेकिन आत्मकल्याण करने का हमको संवेग नहीं है, जोर नहीं है, फोर्स नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, ऐसी शिकायत हमको करनी पड़ती है। ये क्यों, ऐसी शिकायत हमको क्यों करनी पड़ती है? हम इतने इतने शास्त्र पढ़े, गुरुदेव जैसे महापुरुष से हम प्रवचन सुने, समझे भी हैं, दूसरे को समझाते भी हैं, फिर हमारा पुरुषार्थ क्यों नहीं चलता है? इसलिए नहीं चलता है कि हमारा लक्ष्य नहीं बंधा तो हमारा संवेग भी नहीं उत्पन्न हुआ। तो ये संवेग का चौथी भूमिका आती है। और अपूर्व आत्मकल्याण की भावना वहाँ उत्पन्न होती है। जब अपूर्व आत्मकल्याण की भावना होती है तो उस भावना के वशात हमारी प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है और सत्पुरुष की खोज चालू होती है, या सत्पुरुष के संग में रहने के परिणाम, सत्संग के परिणाम भी तीव्र हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तब हमारे आत्मस्वरूप के विषय में हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमारा कैसा आत्मस्वरूप है कि जिसका आलंबन लेने से सहज ही शुद्धि के ऊपर ऊपर के गुणस्थान की शुद्धि की सहज दशा में प्राप्त हो, ऐसा एक स्वरूप जिज्ञासा भी इतनी बलवान होती है कि जहाँ तक आत्मस्वरूप का निश्चय नहीं हो, आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हो, वहाँ तक कहीं भी मन नहीं लगता और कहीं भी चैन नहीं होता। ऐसे एक वैराग्य का एक दूसरा स्टेज वहाँ आता है, अधिक वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारा एकलौता युवान लड़का हो और वो अचानक गुम हो जाए, क्या हो जाए, खो जाए, तो हमको कितनी चिंता रहती है। 25 साल का 27 साल का लड़का हो, एक दो साल शादी किया हो और अचानक वो शाम को घर पे नहीं आए, उधर उधर तलाश करने से मालूम हुआ कि कहीं भी नहीं है, किधर गया, क्या शंका कुशंका हो जाती है। तो कोई उसको उठा गया, किसी ने मार दिया, खून हो गया होगा, क्या हो गया होगा, हमको खाने में पीने में रस आता है क्या। हाँ, ऐसा हुआ था एक संपन्न परिवार में, तो संपन्न परिवार था तो उतनी खोज चली थी कि 20 टैक्सियां अलग अलग सगे संबंधी बैठ करके खोज करने के निकल पड़े। कितने, बड़ा सिटी था, बड़ा सिटी में किडनैपिंग हो जाता है और खास करके संपन्न परिवार के जो सभ्य होते हैं उनका किडनैपिंग हो जाता है, अपहरण होता है और कभी खून हो जाता है या कभी पैसे के लिए भी होता है। और जो लड़का के पिता था तो उतना टेंशन में थे, उतने टेंशन में थे, खाना पीना सोना सब हराम हो गया। एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, चार दिन गया, उसका टेंशन बढ़ने ही लगा, बढ़ने ही लगा। घर में युवान बहू थी, क्या करेंगे, क्या होगा, लेकिन हमारी आत्मा अनादि से खो गई है इसकी चिंता हमें नहीं है। लड़के की जितनी चिंता है इतनी हमारी आत्मा की हमको चिंता नहीं है, इसलिए हमको हमारे आत्मा का पता नहीं मिलता है। वहां तो पता मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, लेकिन यहां तो अगर हम इस परिस्थिति में आ जाए तो उसका पता अवश्य अवश्य मिलता है, वो ज्ञानियों के गारंटी है, लेकिन हमको इतनी दरकार नहीं है। यहाँ भी सहज होनी चाहिए, यहाँ भी सहज होनी चाहिए। अगर हम इस मनुष्य भव में हमारा पता नहीं लगाएंगे तो हमारी पहचान नहीं होगी तो अनंत अनंत काल दुख भोगना पड़ेगा। क्या अनंत अनंत काल, तो फिर से मनुष्य भव मिलना बहुत कठिन है। मिथ्यात्व अवस्था में मनुष्य आयु पूरा होता है तो हमारा शास्त्र ये बोलता है कि उसको मनुष्य भव जल्दी से नहीं मिलता, बहुत तकलीफ है, अनंत काल बीत जाता है और चार गति में बहुत भर परिभ्रमण करना पड़ता है। तो तो इसकी गंभीरता हमको मालूम नहीं पड़ी, आने वाले दुख का हमको ख्याल नहीं है। और ख्याल है कभी सुनते हैं तो सुना अनसुना कर देते हैं, वरना चिंता हुए बिना रहे नहीं, रहे नहीं। हमारे बाजार में दुकान है, हाँ, और हमको पता चला कि हम जिस आइटम का बिजनेस करते हैं उस आइटम का मैन्युफैक्चरर ने इस सिटी में अपना दुकान खोला है, और वो कॉम्पिटिशन में हमारा बिजनेस बंद करा देगा। उतना कॉम्पिटिशन करेगा क्योंकि वो तो बनाने वाला है, हम तो उसको मुनाफा दे करके फिर हमारा मुनाफा लगा करके फिर बेचते हैं, तो हमारा माल कौन लेगा? अगर उतना समाचार मिलता है ना तो हमारी छाती पे चिंता सवार, आज अरे रे हमारा दुकान बंद हो जाएगा, अरे कल हमारा दुकान बंद, आज तो चलती है लेकिन कल तो अभी बंद हुई नहीं, लेकिन बंद होने की परिस्थिति देखते ही छाती के पटिये दबने लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं, हैं? तो ये तो बहुत बड़ा दुख है, परिभ्रमण का दुख तो बहुत बहुत दुख है। फिर भी मोहवश को चिंता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि वर्तमान उदय के प्रति हमारा दर्शन मोह इतना तगड़ा है कि हमको ये बात सुनाई देती, यानी जिसने धोती जैसे पतला चादर ओढ़ी है, बारीक चादर ओढ़ी है, उसको श्री गुरु का उपदेश की लकड़ी है वो लगती है, उसको उपदेश के असर होती है। तो अगर हमको चिंता नहीं होती है तो हमको ये विचार आना चाहिए कि हमारा दर्शन मोह तगड़ा हो गया है, हम कुछ भी करें हमारा कोई भी कार्य सफल होने वाला नहीं है। इसलिए तो कृपालु देव ने लिखा कि दूसरा सर्व विकल्प छोड़ करके पहले क्रम में ये होना चाहिए, बाद में क्या करना वो समझ में आएगा, इसके पहले क्या करना वो समझ में नहीं आएगा। स्वच्छंद से हम करेंगे तो हमारा स्वच्छंद है वो नुकसान का कारण बनेगा। इस तरह से जब अपूर्व जिज्ञासा होती है तो सत्संग आदि में भी प्रयोजनभूत बात पर हमारा लक्ष्य जाता है और हमारी पात्रता में सुधार आता है। और फिर सत्संग में आत्मस्वरूप का पदार्थ का निर्णय होता है, उसके पहले ये पहचान तक पहुंचने की बात है, उसके पहले आत्म प्राप्ति की तीव्र भावना के कारण निजावलोकन शुरू होता है, वो भी क्रम में आता है। और निजावलोकन शुरू होने से अपने परिणामों में विभाव जाति के और स्वभाव जाति के परिणाम के अनुभव का अवलोकन होने से उस भावों का परिचय बढ़ता है, और परिचय बढ़ने से इस भावों की जाति की पहचान आती है। जाति की पहचान आने से दोनों जाति के बीच में भेद ज्ञान का प्रयास चालू होता है, और उस भेद ज्ञान का प्रयास के दौरान ये स्वभाव की पहचान आती है। और स्वभाव की पहचान आने से ये भेद ज्ञान और सहजता को धारण करता है, आत्मस्वरूप की महिमा पहचान स्वरूप की पहचान होने से जितना महिमावंत स्वरूप है, अनंत महिमावंत स्वरूप है, तो पहचान के परिणाम में भी इतनी महिमा आती है कि जो परिणाम में नहीं समाती, अनंत महिमा उत्पन्न होती है, परिणाम में समाती नहीं है। और वो महिमा पुरुषार्थ को जागृत करती है, स्वरूप तन्मुक्ता के पुरुषार्थ को, और महिमा और पुरुषार्थ दोनों मिलकर के स्वरूपानुभव को उत्पन्न करते हैं। उस प्रकार से मोक्ष मार्ग में प्रवेश क्रम से होता है। इसी क्रम से अगर हम आगे बढ़े तो आत्मानुभव हो करके भवभ्रमण का छेद हो सकता है। जहाँ तक आत्मानुभव नहीं होगा, भवभ्रमण का छेद नहीं होगा, भवभ्रमण की अनंतता चालू रहेगी। क्योंकि मिथ्यात्व में अनंत भवभ्रमण का बीज पड़ा है और वो बीज पांगरेगा, सफल हो जाएगा, इसलिए उसको तोड़ना है। इस तरह से संक्षेप में ये क्रम का विषय है, समझ करके हमें उसको अंगीकार करना है। और कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट है। भवभ्रमण की चिंतना क्यों नहीं होती है, ऐसा हमको तो प्रश्न होता है कि इतना दुख आने आ पड़ेगा, ये चार गति का इतना दुख आ पड़ेगा, ये बात हम बुद्धि गोचर तो समझते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि कैसे कि इसकी चिंता नहीं होती है, तो किस प्रकार की बुद्धि है? तो इसका मतलब साफ साफ वो है कि हमारा दर्शन वो तगड़ा है, वर्तमान उदय में हमको बहुत अपनत्व है, और ख़ास करके परिवार में बहुत अपनत्व होता है, और इसलिए इस प्रकार की चिंता का परिणाम छोड़ करके हम संयोग की चिंता कर लेते हैं। वर्तमान में हमको कोई उतनी तकलीफ नहीं होती है जीवन में, मध्यम कोटि के लोग होते हैं, आसानी से जीवन जीते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता बहुत करते हैं, वे लड़का का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा। तो ये अपनत्व इतना बलवान है कि हमको हमारे आत्मा की चिंता करने नहीं देता, तो उसको सत्संग के दौरान मंद करना चाहिए। अपनत्व अगर शिथिल होगा, दर्शन वो शिथिल होगा, तो ये जो चिंतना है या इस विषय जो उपदेश है, अनित्यादि बार भावनाएं हैं, उसका हमको असर पहुंचेगा। फिर भी असर नहीं होता हो तो एक प्रयोग करना है, जो कृपालु देव के एक पत्र में है कि जो अनित्य है, जो असार है, और जो हमको शरणभूत नहीं होने वाला है, कोई भी संयोग हमको शरणभूत नहीं होगा, कोई मृत्यु से नहीं बचाएगा, इसमें हम रोज प्रीति करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा हमेशा प्रीति करते हैं। ऐसे संयोग में हम हमेशा हमेशा प्रीति करते हैं, उस वक्त हमको ये हमारे अनंत दुख का कारण है ऐसी चोट क्यों नहीं लगती है? हम क्यों प्रीति करते हैं? ये हमारी प्रीति, चाहे हमारे संयोग के प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, ये हमको अनंत भव भ्रमण में रुलाएगा, इसकी चोट हमें क्यों नहीं लगती है? वहाँ जागृति आनी चाहिए। यथार्थ रूप से अगर ऐसी जागृति आएगी, ये प्रयोग हम करेंगे, जब प्रीति होगी तभी उसी वक्त, तो ये टूटेगी चीज। इस प्रकार के हमारे परिणाम को जागृत होकर के अवलोकन करेंगे, इसका रस टूटेगा ही टूटेगा। तो रस टूटेगा तो दर्शन मोह मंद होगा, दर्शन मोह मंद होगा तो परिभ्रमण की चिंता आएगी, अवश्य आएगी। थोड़ा भी यथार्थ रूप से करने से तो आ जाता है, नहीं आता है ऐसा नहीं बनता है। यथार्थ रूप से नहीं होता है, अन्यथा प्रकार से होता है तो तकलीफ होती है, तो नहीं होता है, इसलिए यथार्थ होना जरूरी है। क्योंकि ये हमारे आत्म कल्याण के लिए हमको करना है, दूसरे के लिए तो हमको नहीं करना है। तो इस लक्ष्य से हुए तो अवश्य ये होता ही है। पात्रता, यही पात्रता है, यहाँ से पात्रता शुरू होती है। पात्रता में दर्शन मोह मंद होता है, और दर्शन मोह मंद होता है तो ज्ञान में निर्मलता आती है, हित अहित की सूझ आने लगती है निर्मलता के कारण से, और चारों कषाय कर्म का रस मंद हो जाता है, क्रोध मान माया और प्रतिबंध भी ढीला हो जाता है, स्वच्छंद भी मिटता है। ऐसे सब प्रकार के जो परिणाम हैं वो पात्रता में होते हैं। कुटुंब परिवार के साथ रहने का होता है तो फिर साथ में किस प्रकार से रहना, भिन्नता किस प्रकार से गढ़नी, क्लेश न हो ऐसा मार्गदर्शन देने का विनती है। मैंने उसको राजी रखना है, क्लेश नहीं हो तो क्या अभिप्राय क्या है आपका है? झगड़ा हमें नहीं करना है, एक तरफी हो तो हो, हमें नहीं करना है, बात खत्म। उनको समझाइए कि देखिए हम जो मार्ग पर चलने वाले हैं वो तो मार्ग का मूल्य कितना है, इसका मूल्य समझाओ। फिर भी नहीं समझे तो फिर हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वास्तव में तो ये वितराग जिनेन्द्र देव का मार्ग इतना सुंदर और उतना अच्छा है कि हम चले और अगर हमारे परिवार के सदस्य समझदार हो तो वो भी चलने लग जाएंगे। अगर समझदार हो तो, जो ना समझ हो इसका कोई इलाज नहीं है, और ना समझे इसके कारण से उसको क्लेश होगा तो इसका भी कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमको इसका क्लेश की मुख्यता नहीं करनी है, हमको पहले तो मूल्यांकन होना चाहिए कि ये कितनी मूल्यवान चीज है, इसका फल सिद्ध पद है। तो हम चले दूसरे भी चले तो उसको भी लाभ का कारण है, हमको भी लाभ का कारण है। अब लाभ का कारण कोई नहीं समझे, उतना ना समझ हो, इसका क्या इलाज हो सकता है? हमारे परिवार को ऐसा बताएं कि ये नहीं समझना और इसके विरुद्ध चलना, ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना नहीं है, अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी मारने की बात है। इतना ना समझ क्यों होते हो? ये तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए ऐसी बात है, हमारा भी तो कल्याण होगा, आप तुम्हारा भी हो जाएगा। थोड़ी समझदारी से मेहरबानी करके काम लो तो बहुत अच्छा मार्ग है। फिर भी कोई ना समझ होते भी हैं, नहीं भी समझते हैं, विरुद्ध चलते हैं, तो इसका तो कोई जगत में इलाज नहीं है। और ये कुटुंब परिवार हमारा है, ये पॉइजन हमको भी नहीं खाना है। तकलीफ तो कब होता है? दूसरे वाले कोई नाराज होते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है। हाँ, गांव में बहुत लोग रोज नाराज होते हैं, क्लेश करते हैं, इसकी हमको चिंता नहीं होती है। हमारे परिवार वाले क्यों क्लेश होता है, इसकी चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम अपनापन करते हैं, तो ये तो हम जहर खाते हैं, हमको वो जहर खाना नहीं चाहिए, ये हमारे है ही नहीं। प्रारब्ध वसात संयोग हो गया है, हमारे हमारे कोई है नहीं है। हमारापन करना वही जहर खाने की बात है, तो जहर खाना के नहीं खाना, नहीं खाना। क्या है धीरू भाई? है हाँ, हमारे गुरु तो कहते हैं कि ये धूतारे की टोली है, तुमको धूतता है। हाँ, मान सम्मान देता है। गुरुदेव कहते मामणा शब्द थे तने बोला उसे सो, अरे भाई तुम्हें आम करो ने, अरे मोटा भाई तुम्हें आम करो ने, अरे भाई साहब तुम्हें आम करो ने, अरे बापूजी तुम्हें आम करो ने, अरे बापूजी 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 करीने तने ठेकाने करी नाखशे। हाँ, એ મામણા શબ્દોમાં છેતરાવા જેવું નથી। ગુરુદેવ કહેતા અપના કર લો, અપના સ્વાર્થ કો સાધ લો, વો સમજે તો ઇસકા ભી કલ્યાણ હો જાયેગા, નહીં સમજે તો ઇસકા જો હોગા સો હોગા, ઇસકે લિયે હમારી કોઈ જિમ્મેવારી નહીં હૈ। ના ક્યા હા, बात तो ऐसी है, परम शांत रस मूल, शांत रस के मूल है ये सिद्धांत। फिर भी जो हीन पुरुषार्थी होते हैं या विरुद्ध पुरुषार्थी होते हैं, उसको बात जचती नहीं है, तो इसका कोई इलाज जगत में, ये संसार तो ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे जीवों के कारण से ये संसार अनंत काल चलने वाला है और चलेगा, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत। हाँ, वो तो सत्संग में तो समाधान के लिए ही तो सत्संग है, यहाँ तक रखे प्रश्न कर लिया।